Take care, don't panic. Masks, gloves, and sanitizers. We learn to take care. Don't panic. How do we do that? Join us in a two-day e-conference by the Brahma Kumaris Scientists and Engineers Wing to explore wellness tools, spiritual principles, and the power of meditation. Holistic sanitization.
Namaskar. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की ओर से आयोजित दो दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, विज्ञान और अध्यात्म हमारे जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों का आपस में मिलकर चलना जीवन के लिए परम आवश्यक है। जहां विज्ञान एक ओर हमें बाहरी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, तो वहीं अध्यात्म हमें आंतरिक शक्ति, आंतरिक सुकून और शांति प्रदान करता है। और यही कारण है कि इन दोनों को साथ लेकर चलने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई, जो 1988 से सतत कार्य कर रहा है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो विज्ञान अपने बाह्य साधनों के द्वारा मरीजों को, संसार में आई विपदा को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि चाहे वो मरीज हैं, चाहे मरीज के परिजन हैं, या फिर सामान्य रूप से स्वस्थ लोग भी हैं, उन्हें भी मानसिक रूप से सशक्त होने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि डर और भय का एक माहौल है। और हम ये भी जानते हैं कि इस डर और भय, जो कि हमारी एक आंतरिक फीलिंग है, उसे दूर करने में अध्यात्म ही अपनी अहम भूमिका अदा करता है। पिछले एक वर्षों में हम देख चुके हैं कि केवल स्वच्छता ही एक ऐसी चीज है जो हम सबको विपदा से दूर कर सकती है। और वो स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, लेकिन भीतरी स्वच्छता, और न केवल स्वच्छता लेकिन साथ साथ शक्तिशाली स्थिति का भी होना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग होलिस्टिक सैनिटाइजेशन इस विषय को लेकर आया है, ताकि हम हर प्रकार से अपने आप को सैनिटाइज करके समाज को, स्वयं को स्वस्थ रख सकें। और ये सैनिटाइजेशन हमारे लिए एक सामान्य सा शब्द हो गया है आज, बार बार अपने हाथ को धोना, अपने आसपास की स्वच्छता रखना। लेकिन केवल बाहरी नहीं, लेकिन मेंटल सैनिटाइजेशन की भी आवश्यकता है, सोशल सैनिटाइजेशन की भी आवश्यकता है, और साथ साथ इमोशनल सैनिटाइजेशन की भी हम सबको अत्यंत आवश्यकता है। और इसीलिए आज एक सुंदर से विषय पे परिचर्चा को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, और ये विषय है मेंटल सैनिटाइजेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सुंदर से प्रभु स्मृति के गीत के साथ, जिसे हमारे बीच लेकर आ रही हैं सिस्टर डॉक्टर दामिनी।
मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम।
मित्रों, विपत्ति के समय दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो हम निराश और हताश होकर बैठ जाएं, या फिर आशा का दीप अपने मन में जलाए रखें और सुंदर प्रयास करते रहें उस विपत्ति के दौर से बाहर आने का। आशा को हम इंग्लिश में होप कहते हैं, और होप जो इंग्लिश वर्ड है अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सी बात कहता है कि होल्ड ऑन, पेन विल एंड। सचमुच जो भी दर्द है, तकलीफ है, उसका अंत जरूर होगा। और इसी आशा के किरण को साथ लिए इन दो दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस के एम और ऑब्जेक्टिव को हम सबके सम्मुख रखने के लिए आ रहे हैं साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन भ्राता मोहन सिंघल जी, जो कि पिछले 55 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़े हुए हैं और देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके पश्चात अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे सम्मुख होंगे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय बंधारू दत्तात्रेय जी। आइए अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। इस कॉन्फ्रेंस में जो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग ने आयोजित की है, इस कॉन्फ्रेंस जिसका कि नाम होलिस्टिक सैनिटाइजेशन रखा गया है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से हम सब लोग सैनिटाइजेशन वर्ड को बहुत सुनते भी आ रहे हैं, इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, और इस रीति से जहां पर भी जाएं वहां पर ये सैनिटाइजेशन इन वन वे और अदर वे हम इसको यूज कर रहे हैं। ये सैनिटाइजेशन वर्ड में होलिस्टिक जो वर्ड ऐड किया गया है, इसके पीछे एक तात्पर्य है। वह लक्ष्य यह है कि यह जो सैनिटाइजेशन वर्ड है, ये अपने में एक अकेला ही नहीं है, लेकिन इसको अगर हम अलग अलग एंगल से देखें, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखें, तो यह शब्द जो है, इसे हम कई दृष्टिकोण से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे फिजिकल सैनिटाइजेशन, मेंटल सैनिटाइजेशन, स्पिरिचुअल सैनिटाइजेशन, इमोशनल सैनिटाइजेशन, मेंटल सैनिटाइजेशन आदि आदि। और ये जितने भी सैनिटाइजेशन है, इन वन वे और अदर वे, थोड़ा सा ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह जो कॉन्फ्रेंस, जो एक्चुअली पिछले मास होने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से यह नहीं हो सकी, उसको अब 5 और 6 जून को आयोजित किया है। यह जो कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रही है, वास्तव में आज दो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। एक तो ये है ही कॉन्फ्रेंस, और दूसरा आज का दिन 5 जून पूरे विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और दोनों का ही आपस में काफी गहरा संबंध है। तो ये जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के स्वरूप हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये कॉन्फ्रेंस में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो ये कोरोना या COVID-19 है बीमारी, इसको केवल हम भौतिक रूप से ही अगर न देखें, भिन्न भिन्न रूप से देखेंगे, तो शायद इससे छुट्टी पाने में, इसको क्योर करने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर मानसिक रीति से हम इसे देखें तो ये आवश्यक है कि हम अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, कि यह जो स्ट्रांग शक्तिशाली मन है यह उस दिशा में ही कार्य करे जिस दिशा में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कोरोना है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और लेकिन होता क्या है, अक्सर करके आजकल के समाज में हम सभी को कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने की आदत अधिक हो गई है। नेगेटिविटी हमारे जीवन का एक अंग बन गई है और हम सोचते हैं अरे कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और वो बात हम लोगों को नेगेटिविटी की ओर जब ले जाती रहती है तो इससे पॉजिटिव अचीवमेंट्स होने की बजाय कई बार ऐसा भी होता है कि मन के अंदर भय और निराशा आदि का जन्म हो जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपने मन को ऐसा करें कि वो मन सदैव उस दिशा में कार्य करे जिधर हम चाहते हैं। और इसीलिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन को अगर जिसने जीत लिया, और मुझे ये बताते हर्ष होता है कि मन को जीतना कोई बहुत कठिन नहीं है बल्कि सहज है, और यहाँ पर जो बताया जाएगा आपको इस मेंटल सैनिटाइजेशन के विषय के ऊपर उसमें इसकी भी एक झलक दी जाएगी। और इसी प्रकार से इमोशनल सैनिटाइजेशन, प्रोफेशनल सैनिटाइजेशन भी है, और स्पिरिचुअल सैनिटाइजेशन आदि आदि। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन सब सैनिटाइजेशंस के ऊपर आज ध्यान से सुने। आज और कल की ये जो दो दिन की कॉन्फ्रेंस है, चार सेशन की, और केवल सुने ही नहीं बल्कि इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके उस दिशा की ओर हम कार्य करना भी शुरू कर दें, जिससे कि जब भी आवश्यकता हो, हमें हो, दूसरे परिवार वालों को हो, समाज के किसी और अन्य अंग को हो, किसी को भी हो, हम सही दिशा की तरफ उसे ला सके, उधर की तरफ उसके दिशा को मोड़ सके। साथ ही आज जो ये मैं बता रहा था आपको, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसका वास्तव में थीम भी है रेस्टोरिंग द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्योंकि आज जो इकोसिस्टम पूरा का पूरा सारे विश्व भर में हो गया है, इसने एक अपनी एक उल्टी ही दिशा पकड़ ली है। हम लोगों ने विकास की तरफ तो ध्यान दिया, देना भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश अधिक मात्रा में कुछ करते चले गए, और विकास और विनाश यह जो हुआ इसकी वजह से रेस्टोरेशन पूरा का पूरा जो हम चाहते थे कि ये बना रहे इकोसिस्टम में, यह नहीं बना रह सका। और अब आज आवश्यकता यह है कि हम इकोसिस्टम को इसको एक ठीक से रेस्टोर करें। वास्तव में मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमें ख्याल आता है कि जब 1972 में पहले कोई इसका नाम भी नहीं जानते थे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का, उस समय स्टॉकहोम में जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर एक ही प्रधानमंत्री पूरे विश्व भर से गई थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने उस समय कहा था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूशन, गरीबी जो है सबसे खराब प्रदूषण है, और गरीबी के कारण ही मनुष्य जंगल काटता है, लकड़ी काटता है, और अनेक ऐसे काम करते हैं जो पर्यावरण के विपरीत विरुद्ध दिशा में चले जाते हैं। तो उसके बाद जैसे लगभग सभी लोग भूल ही गए इस बात को, और फिर याद आया 1992 में जब विश्व की एक सबसे बड़ी उस समय तक की कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, और उस कॉन्फ्रेंस में यह बात निकली थी कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण एक ये है, वो ये पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो इस बात को और ज्यादा एनलार्ज करता है, बताता है, उसका कारण हमारा अपनी लाइफस्टाइल है। मनुष्य की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उस लाइफस्टाइल में उसका लग्जरी ओरिएंटेशन ज्यादा होता चला जा रहा है, और इस कारण से जब वास्तव में तीन शब्द के ऊपर उसका पूरा जीवन ही आज टिक गया है, वो है तीन, भ्रम, भय और भोगवाद। भोगवाद पर तो पूरी दुनिया टिकी है, और आज का मनुष्य तो पूरा देख ही रहा है भोगवाद कि किस दिशा में उसे ले जा रहा है। और इसके साथ ही साथ दो चीज और है, एक है भय, और भय तो आप देख ही रहे हैं कि इस कोरोना ने, कोविड ने कितना भय का वातावरण, निराशा का वातावरण चारों तरफ पैदा कर दिया है। और इसका एक मुख्य कारण है भ्रम। भ्रम के किस बात का? केवल हम अपने को, अपना शरीर के आधार पर ही अपने को सब कुछ समझ बैठे हैं। वास्तव में हम केवल शरीर ही नहीं है, हाँ शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। और यह जो भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूँ और आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, कोई बात नहीं विशेष, तो इसने हमें काफी भ्रमित कर दिया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन में सही दिशा की ओर आगे बढ़ते चलें, और जितना जितना हम सही दिशा की ओर बढ़ते चलेंगे उतना उतना हम ये महसूस करते जाएंगे कि केवल विज्ञान ही सब कुछ नहीं, लेकिन विज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सब मानते हैं, विज्ञान भी मानता है कि पशु पक्षी होते हैं, पशु आदि गाय भैंस, उन्हें बहुत प्यार से पाला जाए, अगर बहुत प्यार भरा हाथ उनके पीठ पर रखा जाए तो वो दूध ज्यादा देते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को बड़े प्रेम से हम जल देते हैं, उनको दृष्टि देते हैं, और उनकी तरफ जब हम इस दिशा की ओर कार्य करते हैं तो देखा गया है उनका बढ़ाव और तेजी से होता है, और जीवन में वो हमें और अधिक देते हैं जितना कि हम शायद कभी एक्सपेक्ट भी न किया होगा। तो इसलिए आवश्यकता भारतीय संस्कृति की तरफ थोड़ा सा अपना झुकाव लाने की है कि हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ जब झुकाव आएगा तो उस झुकाव के साथ साथ फिर हमारा जब होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट होगा तो ये कोरोना बीमारी बहुत तेजी से, अगर आई भी है तो उतनी तेजी से ये निकलेगी भी। भारतीय संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा हमारा परिवार है, पृथ्वी परिवार है, लेकिन इसे हम परिवार न समझ करके हम ऐसा समझ बैठे हुए हैं कि ये जो पूरा वसुधा है इसको हम ही चला रहे हैं, मनुष्य ही, और जितने पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे प्रकृति आदि है ये सब एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो चीज है ये पूरा का पूरा एक परिवार है, और ये सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। किस तरीके से हम सब जानते हैं, जब जैसे पौधा होता है, जमीन में बो दो, बीज बो दो, पौधा पैदा होता है, और फिर जीवन पर्यंत वो माता के साथ, धरती माता के साथ लगा रहता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, जब बच्चा मनुष्य का, तो वो फिर दो हाथ दो पैर से चलता है, चार से, पशु की तरह, और इस प्रकार से वो हमारी फैमिली के एक सेकंड यंगेस्ट मेंबर हो गए। और जब वो और बच्चा बड़ा होता है, मनुष्य होता है पूरा, तो तब उसके अंदर जो है वो दो पैर से चलता है और सारे कार्य करता है, और वो एल्डेस्ट मेंबर परिवार का हो जाता है। अब देखिए ये एल्डेस्ट मेंबर और कहां यंगेस्ट मेंबर, पेड़ पौधे वगैरह वो जीवन पर्यंत वहीं लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यंगेस्ट मेंबर उन्हें नहीं समझते और उनको उनका विनाश करते रहते हैं, जंगल कटते रहते हैं और इस प्रकार से विकास के नाम पर ऐसा कार्य होता जाता है जो पूरे पर्यावरण को बिगाड़ देता है। तो आज आवश्यकता एक इस बात की है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की तरह बात करें, और साथ ही साथ एक और सिद्धांत भी भारतीय संस्कृति ने दिया, जियो और जीने दो। हम खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, यानी सबको बराबर की तरीके से बिहेव करें, आदर सत्कार के साथ उनसे व्यवहार करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो एकदम जब आदर सत्कार पूरा का पूरा हर एक कोई पाएगा तो एक दूसरे के लिए संबंधों में प्रेम रहेगा, कहीं कटुता नहीं रहेगी और इस प्रकार से पूरा परिवार के अंदर, समाज के अंदर प्रेम व्याप्त होगा। इसी के साथ साथ अगर हम ये भी समझें कि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है, तो ये पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हम सब खेल खेल रहे हैं और ये पांच तत्व जो हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, किसी विचारक ने ठीक ही बोला है, वास्तव में प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक तरीके से पूरे संसार का संचालन करते हैं। किस प्रकार से कि भगवान कहते हैं परमात्मा, गॉड, भगवान, तो भ डिनोट करता है भूतल पृथ्वी का, ग गगन का, व वायु का, व के आगे जो डंडा है अ वो अग्नि और न नीर, यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पांच ही जैसे पांच तत्व हैं और साथ ही साथ भगवान परमपिता परमात्मा ईश्वर को भी ये जैसे डिनोट करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है आज कि हम पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हम आगे बढ़ते चले और आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे समाज की तरफ अपने कदम बढ़ाएं जहां पर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग शोक आदि नहीं होगा और साथ ही साथ जो आज का दिन है पर्यावरण प्रदूषण के लिए विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसको भी यथार्थ रीति से हम मना सकेंगे और उसको मनाने के साथ हम फिर से उसी को रेस्टोर करें, उसी प्रकृति को जो काफी अरसे पहले थी और हमने जो सुना है भारत जो सोने की चिड़िया थी, जहां सब प्रकार के सुख शांति थे, क्यों ना हम फिर से उस दिशा की ओर कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब जो लोग आए हैं इसे केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि सुनकर है इसमें अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी देंगे और उन वैल्यूएबल सजेशंस के आधार पर हम सब आगे बढ़ते हुए एक नई दिशा की ओर और अपने कदम बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
शांति। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के साइंटिफिक एंड इंजीनियर्स विंग की ओर से सर्वांगीण स्वच्छता विषय का लेकर एक नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए राजयोगी भारत भूषण जी, नेशनल ई कोऑर्डिनेटर साइंटिफिक एंड इंजीनियर्स विंग, मुझसे मिले थे और मुझे निमंत्रण दिया था, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया था। देश में कोरोना महामारी के कारण अभी स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से आप लोगों से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। मैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग विंग के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई देता हूं। स्वच्छता से हमारा अभिप्राय होता है कि शारीरिक तौर पर हम स्वच्छ से रहे और हमारे आसपास का वातावरण की भी स्वच्छता हो, यह जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा देश भर से सफलतापूर्वक चलाए गए इसी स्वच्छता अभियान का आप भी हिस्सा रहे हैं। आज प्रश्न बाहरी स्वच्छता का ही नहीं, मानसिक स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता और आध्यात्मिक स्वच्छता भी आज उतनी जरूरत हो गई है जितनी बाहरी स्वच्छता विश्व भर की समस्याओं का कारण मनुष्य के मन में उत्पन्न नकारात्मकता है। दूसरे आपसी संबंधों में भी मलिनता आ गई है, जिसके लिए हमें सामाजिक स्वच्छता की आवश्यकता है। इसी तरह धर्म, जाति, सामाजिक असमानता जैसे विकारों के लिए आध्यात्मिक स्वच्छता जरूरी है। कैसे हम समाज में मानवीय मूल्यों को बनाए रखें और मानवता के लिए कार्य करें, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रह्मकुमारी संस्थान सर्वांगीण स्वच्छता की दिशा में अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। विशेष तौर पर ध्यान का क्रिया के द्वारा यह संस्थान लोगों में हर प्रकार की स्वच्छता ला रहे हैं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसे आत्मविश्वास बढ़ता है। आज के इस कठिन दौर में जब कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही है, इसमें यदि आत्मविश्वास बढ़ा जाए, इच्छा शक्ति सुदृढ़ ही हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही बढ़ जाएगी, क्योंकि देख गया है अधिकतर मृत्यु डर दरअसल आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हो रही है। यदि होलिस्टिक सैनिटाइजेशन होगा तो स्वतः हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस महामारी के दौरे में जागरूकता का काम करें, मास्क पहनना, उचित दूरी और स्वच्छता की तो हमने बात कर ली है, किसी न किसी रूप में समाज को अपना योगदान दे, दवाई भी कड़ाई भी इस संदेश का पालन करें। आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसे में कामना करता हूं। एक बार पुनः मैं आयोजकों को इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा के पास आपके हर समस्या की चाबी है, हर अंधेरे के लिए प्रकाश है, हर दुख दर्द के लिए दवा है। आवश्यकता है तो केवल अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखने की। वो कहते हैं ना जो कि जब चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब केवल ईश्वर ही तो दिखाई देते हैं। और सचमुच उनका संबल हमें मानसिक रूप से बहुत सशक्त करता है, मजबूत करता है। ईश्वर के साथ और सहयोग को अनुभव करना हमें मेंटली सैनिटाइज करता है, मन को स्वच्छ भी करता है, स्वस्थ भी करता है और शक्तिशाली भी करता है। और यही आज का सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय पर और सुंदर प्रकाश डालने के लिए और हम सबको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए अब हमारे बीच आ रही हैं यूरोपीय देशों में ब्रह्मा कुमारी केंद्रों की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती जी, जो पिछले 60 वर्षों से अपने पूरे जीवन को ईश्वरीय कार्यों में लगाई हुई हैं और 100 से भी ज्यादा देशों में आपने भ्रमण करते हुए सब तक ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को पहुंचाया है, सबको मानसिक रूप से बहुत सशक्त बनाया है। तो आइए स्वागत करते हैं सिस्टर जयंती जी का।
ओम शांति। आज के समय सैनिटाइजेशन शब्द तो हर एक के मुख पर आ चुका है, परंतु आज हम उठाते हैं टॉपिक मेंटल सैनिटाइजेशन, क्योंकि हाथ को साफ करना, अस्थान को स्वच्छ बना के रखना, ये तो हमें मालूम ही है, परंतु अभी हम थोड़ा ये विचार करें कि आज के संसार में जो मनुष्य बहुत दुखी हो चुका है उसका मुख्य कारण क्या है। कोविड से पहले भी कुछ और कारण था और कोविड होते हुए भी कई लोग बहुत अच्छी तरह से आराम से अपने जीवन को चला रहे हैं और कई बहुत दुखी होकर के मजबूरी से अपने को चला रहे हैं और परिवार को भी संभाल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। तो मेंटल सैनिटाइजेशन का भाव ये है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति में हम बिल्कुल उसको ऐसे तैयार रखें जो बिल्कुल वो क्लीन हो, वो स्वच्छ बन जाए। वैसे तो हम बहुत ज्यादा समय बाहर ही अपना ध्यान देते हैं, परंतु स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हमको ये बताया गया है और अनुभव भी ये कहता है इनसाइड आउट, जो कुछ अंदर की बातें हैं उस अनुसार ही बाहर में वो वार्तालाप चलता है अथवा वो वातावरण बनता है। तो मेंटल सैनिटाइजेशन का मतलब ये है कि पहले हम अंदर अपने आप को झांक के देखें कि हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार से है, और यदि मानसिक स्थिति नेगेटिव है, और लोग नेगेटिव के भी भिन्न भिन्न डेफिनेशंस दे सकते, परंतु आध्यात्मिकता के हिसाब से यदि हम कहते हैं कि नेगेटिविटी है अंदर, उसका मतलब ये है कि कहां न कहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब बातों के कुछ न कुछ अंश मात्र भी यदि हमारे मन में वो संकल्प चल रहे होंगे तो वो अनक्लीन स्थिति है, अस्वच्छता है। और आप जानते हैं कि यदि कोई अस्वच्छ स्थान है, वहां शुद्धि नहीं है, तो फिर वहां पर जर्म्स की ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती, बैक्टीरिया भी उसी स्थान पर उत्पन्न होते। तो हमेशा पुरुषार्थ ये रहता कि अपने तन को भी हम स्वच्छ बनाकर चलें, अपने रहने की व्यवस्था भी ऐसे करें जो वहां पर भी हर प्रकार से स्वच्छता हो, तो फिर वहां जर्म्स बैक्टीरिया आने की कम मार्जिन है। आजकल हम तो ये भी जानते हैं कि सैनिटाइजेशन करते हैं हाथ का तो वायरसेस भी भाग जाते। तो इसी तरह से मन के अंदर यदि हम स्वच्छ स्थान बनाकर रखेंगे तो वहां पर मन हमारा सदा ही खुश मिजाज रहेगा। मन के अंदर प्रेम भावना, शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रहेंगी। और यदि अंदर की हमारी धरनी इतनी स्वच्छ नहीं बन चुकी है, यदि उसमें कहां न कहां किस प्रकार से कचरा है, तो वो जो पोल्यूशन है अंदर का वो हमारे चेहरे पर भी नजर आता, मानो कि अंदर मेरा क्रोध कुछ चल रहा है किसी के प्रति। कुछ कारणवश मैं बोल नहीं पाती हूँ उस समय, परंतु अंदर जो क्रोध जल रहा है वो सारी इन्फेक्शन बढ़ चुकी है तो मेरे चेहरे पर भी अवश्य नजर आएंगी, और फिर मेरे मुख से भी कुछ न कुछ ऐसे शब्द निकल आएंगे जिससे लोगों को पता चलेगा कि अंदर इसका कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्वच्छता हो अंदर में जो हम वातावरण को भी स्वच्छ बना कर रखें, और जो हमारे चेहरे से हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो भी अनेकों को कुछ सहयोग मिले, कुछ उम्मीद पैदा हो, आगे के लिए कुछ उनका हौसला भी बढ़े, कुछ हम उनको एम्पावर कर सके। परंतु तब शब्द ऐसे निकलेंगे जबकि अंदर हमारी मानसिक स्थिति इतनी प्योर और पॉजिटिव होंगी। तो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कई प्रकार से यत्न करते हैं, परंतु ये देखा गया है जब तक अंदर की बातों को हमने पूर्ण रीति से निकाला नहीं है तब तक कितना भी हम पुरुषार्थ करें हमारा पॉजिटिव थिंकिंग वैसे ही नहीं बन सकता। परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके साथ साथ सुस्ती, आलस्य, अवेलापन, बहानाबाजी, ये बातें हम निकाल देंगे तो फिर हमारी जीवन में बहुत खुशी आ सकती और हम निमित्त बन सकते हैं अनेकों को वो जीवन में भी देने के लिए। ये भी देखा गया है कि जब से अपने पास नॉलेज आई है पॉजिटिव साइकोलॉजी की, तो उन्होंने सारी रिसर्च के हिसाब से ये बताया है कि 19th सेंचुरी में उन्होंने सारी जब साइकोलॉजी का मार्ग ऑफिशियल वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हुआ था तो उन्होंने सारी जांच जो की थी वो थी क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर, मोह के ऊपर इत्यादि। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को तो बहुत कम समय निकला हुआ देखते हैं, एंड ऑफ 20th सेंचुरी करीब निकली। करीब 100 वर्ष नेगेटिव साइकोलॉजी और फिर उसके 100 वर्ष के बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी निकली। तो मैंने एक बहन जिसने टेम्पल्टन प्राइज लिया हुआ था पॉजिटिव साइकोलॉजी में, उसके साथ कुछ हमारा डायलॉग चला, तो उससे मैंने पूछा कि इसका कारण क्या, इतनी देर से पॉजिटिव साइकोलॉजी क्यों निकली। तो उसका उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि जो ये नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं उनका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है आत्मा के ऊपर, और उसको हम कहेंगे लाइक अ स्लेज हैमर, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट बहुत समय तक चलता है। मानो कि आप 5 मिनट क्रोध करो, आपके शरीर में कितनी वो उथल पाथल होंगी, ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट की, पल्स की, हर प्रकार से मेटाबॉलिज्म की, और वो सिर्फ 5 मिनट तक नहीं चलेंगे, कम से कम आधा घंटा या उससे भी अधिक समय, इतना समय लगेगा ताकि फिर से हमारा शरीर वापस अपने बैलेंस को पकड़े। तो इतना उसका इम्पैक्ट रहा खुद के ऊपर। दूसरे के ऊपर मैंने जोश किया तो उनों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा वो तो पता नहीं कितना समय तक चलेगा, और कभी हम उस बात को मिटा सकेंगे या नहीं भी मिटा सकेंगे। तो इतना उसका जबरदस्त असर होता। परंतु जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, मानो की खुशी है, प्यार है, रहम भावना है, सच्चाई है, तो ये जो फीलिंग्स अपने अंदर उत्पन्न होती ये बहुत सूक्ष्म है, और साथ साथ बहुत कम समय तक वो हाजिर होती। और यदि मानो कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है परंतु एक टेलीफोन कॉल आने से वो खुशी कहाँ गायब हो जाती, यदि टेलीफोन में कुछ ऐसे समाचार हमें मिलता। अभी प्यार है परंतु किसी ने कुछ ऐसे अपशब्द बोले तो वो प्यार की फीलिंग बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। बस ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत कम समय तक चलते हैं, तो इस कारण से ओनो को रिसर्च करने के लिए इतनी सूक्ष्म मशीनरी चाहिए थी जिससे वो उस बात का माप तोल कर सके। 20th सेंचुरी के एंड तक ऐसे इन्वेंशंस निकल चुके थे जो फिर इतने सूक्ष्म बातों को वो समझ भी सके, पकड़ भी सके, फिर उसका एनालाइज भी हो सके, फिर उसका परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, उसको लंबा समय तक कैसे चला सके, ये सब उन्होंने जांच की। तो मैंने पूछा कि आप लोगों के रिसर्च के हिसाब से कौन सी बातों के कारण अच्छी फीलिंग्स, शुभ फीलिंग्स, जिसको मेंटल सैनिटाइजेशन कहें, बहुत शुद्ध फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स उत्पन्न होती। तो उन्होंने कहा कि कई बातें हो सकती, परंतु बहुत करके हमने देखा है कि जो भी हम बातें यूज करते हैं अपने में अच्छी फीलिंग्स उत्पन्न करने के लिए, कुछ समय तक उसका अच्छा असर होता, परंतु उसको चलाते रहो चलाते रहो, फिर तो उसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता। ज्यादा लंबा समय तक वो काम आप करते चलो तो भी सदा वो पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रह पाती। मानो कि आपको एग्जांपल देती, बहुत सुंदर सनसेट है, आप बड़े प्यार से देखने जाती हैं, परंतु थोड़ा समय चलता, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, यदि उससे लंबा समय चलता आप कहेंगे हम तो बोर हो गए, और फिर आप कहेंगे अच्छा चलो दूसरा हम कुछ करें, या कुछ खाने पीने की चीज है, मानो कि आइसक्रीम है, बहुत लोगों को आइसक्रीम पसंद आता, तो आइसक्रीम आप खाओ, एक हेल्पिंग, सेकंड हेल्पिंग, थर्ड हेल्पिंग तक आप थोड़ा संकोच करेंगे, परंतु आपके मित्रों ने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप खा लो, तीसरी हेल्पिंग खाई, फिर तो आपकी तबीयत पर उसका असर होने लगेगा। फोर्थ हेल्पिंग तो आप बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे खाना, क्योंकि तबीयत में ही घबरावट आने लगी है। तो शुरू में उसने अच्छी फीलिंग्स पैदा की, आपको मजा आने लगा, सेकंड में वो भी अच्छी फीलिंग्स थी परंतु अभी नो मोर, थर्ड खाने पर तबीयत बिगड़ गई। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिस आधार से हम कांस्टेंट अपनी अच्छी फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स बनाकर रख सकते, वो एक ही साधन है रिसर्च के हिसाब से उन्होंने बताया, और वो है मेडिटेशन। जब व्यक्ति मेडिटेशन करता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसको बढ़ाते जाओ 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, वो कांस्टेंट आपकी फीलिंग्स अच्छी चलती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी। उसमें वापस लौटने की बात नहीं होती, आपके मन के ऊपर, तबीयत के ऊपर उसका कुछ प्रकार का भी नेगेटिव असर नहीं आ सकता। तो मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिससे हम मेंटल सैनिटाइजेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन सोचते हैं, उसमें भी फिर कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती है। आजकल तो एक सुपरमार्केट बन गया है जिसको जिस प्रकार का मेडिटेशन करना है वो उस पर पुरुषार्थ करके वो उसका अनुभव करने कर सकते हैं। परंतु राजयोगा मेडिटेशन ऐसा है जो कोई भी व्यक्ति बहुत सहज तरीके से उसको अपना सकता। इसमें ना आयु की बात है, मैं जब 8 वर्ष की थी उस समय दादी जानकी, जो अभी 1 वर्ष से वो अव्यक्त हो चुके हैं, तो उन दिनों में मैं पेरेंट्स के साथ पुणे में रहती थी, तो पेरेंट्स ने शुरू किया मेडिटेशन, तो मैं भी साथ साथ चल पड़ी। तो मेडिटेशन छोटा बच्चा भी सीख सकता राजयोग के हिसाब से, और फिर दादी की आयु 104 ईयर्स तक चली, तो लास्ट तक भी दादी मेडिटेशन अथवा योग अभ्यास करती थी। जो वो फिजिकल साधन होती हैं योग अभ्यास के, हठ योग जिसको कहते हैं, उसमें मैं नहीं समझती कोई इतनी बड़ी उम्र वाला लंबे समय तक कर सके। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति भी हो, परंतु जनरली स्पीकिंग बिल्कुल एज का कुछ न कुछ हिसाब चलता रहता। परंतु राजयोग मेडिटेशन में बच्चा भी सीख सकता, घर में रहने वाला गृहस्थी भी सीख सकता, कोई अकेला व्यक्ति रहने वाला हो वो भी सीख सकता, परंतु साथ ही साथ कोई बहुत बुजुर्ग लंबी आयु वाला हो वो भी सीख सकता। क्यों? क्योंकि ये है इंटरनल बात, इसमें एक्सटर्नल फिजिकल बात की कोई बात ही नहीं है। इंटरनल हमें दो बातें सोचनी होती, मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं, हां ये आंखें देखने वाली है नहीं, जो आत्मा मैं अंदर निवास करती हूं ब्रिकुटी के बीच में, मैं वो देखने वाली आत्मा हूं इन नेत्रों द्वारा। ये तो जैसे कि हमारे दो कैमरा है। क्यों? क्योंकि अभी मानो एक लंबी लंबी ब्राउन चीज मुझे नजर आ रही है, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रस्सी है या ये सांप है? ये नेत्र मुझे नहीं बताएंगे, बुद्धि अथवा विवेक जो अंदर आत्मा में है वो भिन्न भिन्न चिन्ह देख करके वो बता सकता, हाँ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, लगता है कि ये रस्सी नहीं है, ये कोई सांप है। तो नेत्र कैमरा का काम करती, क्या देख रही है, कैमरे से कौन सा चित्र खींचा है, उसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो आत्मा अंदर की देख रही है और समझ रही है और फिर उस अनुसार प्रैक्टिकल कदम उठा रही है। या हमारे कान है, कानों ने आवाज सुना, परंतु जो आत्मा अंदर है उसने उस आवाज को समझा कि मेरे काम की चीज है या मेरी फालतू चीज है। तो फालतू चीज है तो मैं उससे अपने को दूर कर लेती हूं, मेरा समय बर्बाद न जाए, और अच्छी काम की चीज है मैं बैठ करके ध्यान से उस बात को समझने की कोशिश करेंगी। तो इस प्रकार से जब हम ये सोचते हैं कि आत्मा कौन है, मैं हूं ज्योति बिंदु स्वरूप ब्रिकुटी के बीच निवास करने वाली छोटी सी बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल, मैं हूं आत्मा, और परमात्मा मात पिता सखा स्वामी सतगुरु, वो ही एक निराकार जिसको हम शिव कहते हैं, उसी एक को याद करें, ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा शिव कल्याणकारी। जब मन को हम और सब तरफ से हटा करके अंदर के संसार में ले जाते, आंतरिक स्थिति शांति की ऐसी है जो सहज ही हम परमात्मा के साथ वो हम संबंध जोड़ सकते। और यदि हमारा ध्यान इधर उधर होगा तो हमारा योग नहीं लगेगा, परंतु योग का मतलब है अंदर की यात्रा करके इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, इस संसार से पार, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्योति की दुनिया अथवा अखंड ज्योति स्वरूप जो अपना परम धाम ब्रह्मांड धाम, उस धाम का रहवासी परमात्मा और आत्मा भी उसी धाम की रहवासी। बस ये दो बातों की जानकारी चाहिए, मैं कौन हूं और वो ऊपर वाला कौन है। तो जब वो हमारे संकल्प होने लगते हैं तो परमात्मा द्वारा हमें बहुत शांति शक्ति पवित्रता सत्यता नम्रता ऑटोमेटिकली आने लगती है। और न सिर्फ उस समय के लिए जब तक कि हम योग में बैठे हैं, परंतु मानो 5 मिनट का मैंने योग किया उसका असर कम से कम आधे घंटे तक हमारे ऊपर वो चलता रहेगा। शांति के सागर द्वारा मैंने शांति की किरणें धारण करके अपने में समा रखी, तो वो जो शांति की किरणें हैं मुझे बिल्कुल शीतलता का अनुभव कराती, और वो शांति की किरणें फिर सब तरफ फैलने लगते, न सिर्फ मेरे तक पहुंचे परंतु परमात्मा सागर, तो वो शांति के शक्ति की किरणें सब तरफ ट्रैवल करके न सिर्फ इस कमरे में, न सिर्फ इस हॉल में, परंतु उससे भी पार दूर दूर तक वो शांति की किरणें जाती हैं। तो इससे जितना हमारा मन परमात्मा की याद में जुड़ा रहेगा, उतना ही हमारे मन की स्वच्छता बढ़ती जाएंगी। न सिर्फ उस समय जब तक कि हम योग में बैठे हैं, परंतु बाद में भी वही गुण मेरे साथ रहेंगे। तो मेंटल सैनिटाइजेशन का एकमात्र तरीका है कि हम राजयोग सीखें, और मेडिटेशन का अनुभव जितना जितना हमारा बढ़ता जाएगा, उतना दिन भर हमें पहचान होगी कि हमारा मन किस तरफ भाग रहा है, और हम भागते हुए मन को पकड़ के वापस अपने ठिकाने पहुंचाते हैं, ताकि फिर से वो सीधी राह पर चल सके। जो हमारे इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया, वो हमारे मन को नचाती रहती है। आंखों ने कुछ चीज देखी, मन उसके पीछे भागेगा, ये चीज मुझे जरूर चाहिए। हालांकि मेरे पास कितने शूज होंगे, कितने चप्पलें होंगे, परंतु वो चीज मैंने देखी, मुझे वो जरूर चाहिए। आंखें तो यही है, मन भाग गया, और मन को फिर वापस कंट्रोल करने में हमारा टाइम लगेगा। परंतु यदि हमारा योग अभ्यास चालू है, तो आत्मा इस रथ की ड्राइवर, जब आंखें कुछ चीज देखती है तो मन में संकल्प आता कि ये चीज चाहिए, उस समय बुद्धि वो निर्णय लेती है कि ये यूजफुल है या यूजफुल नहीं है, और यदि यूजफुल नहीं है तो बुद्धि मन को पकड़ लेता है, घोड़े को लगाम लगाकर पकड़ता, और हम अपने आप को समझाते हैं कि उस तरफ भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई उसमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी, और फिर अपने ही अंदर हम अपने मन को ले जाते, और मन को जो आंतरिक खुशी और शांति का अनुभव होता, आत्मा खुद ही रियलाइज करती कि वो चीज लेने से कितनी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी हमें खुशी होंगी, फिर तो कबर्ड में पड़ गया, और फिर एक वर्ष के बाद उसको देखेंगे, या चलो एक बारी पेन लिया, वो मजा चला गया, फिनिश, फिर तो कबर्ड में ही पड़ा रहेगा। तो आत्म स्मृति से मैं कौन हूं इसको जानने से, एक तो हम अपने मन को समझ सकते हैं कि मन मेरा कहां कहां भाग रहा है, क्यों यहां वहां भाग रहा है। तो जब मन को हम समझ सकते, फिर उसको धीरे धीरे हम पुरुषार्थ करके स्वच्छ बनाते जाते हैं, तो हमारा मेंटल सैनिटाइजेशन हो सकता। जब तक मन को नहीं समझा, तब तक मेंटालिटी किस तरह से होंगी। मेंटालिटी का कनेक्शन है ही मन के साथ, तो मन को समझना बहुत आवश्यक है, परंतु साथ साथ मन कहाँ है? मन कोई मेरी ब्रेन के अंदर नहीं है, मन कोई फिजिकल वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां बैठे अभी मैं अमेरिका पहुंच सकती हूँ एक सेकंड के अंदर, अभी यहां बैठे मैं 5 वर्ष पहले की कहानी याद कर सकती हूँ, कि आपसे मुलाकात हुई थी, इस प्रकार से स्थान था, आपके कपड़े किस प्रकार से थे, मेरे कपड़े किस प्रकार से थे, वो सब बातें इमर्ज कर सकती। मन यदि फिजिकल वस्तु हो, और ब्रेन तो फिजिकल है, तो यदि मन फिजिकल वस्तु होती, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गो बैक एंड फोर्थ इन टाइम, क्योंकि फिजिकल चीज को आप वापस लौट के ले जाओ 5 वर्ष, आप सोचो कि ये मेरा शरीर जो आज है, 5 वर्ष पहले जैसे था मैं वो बन जाऊं, ब्रेन मेरा जैसे 5 वर्ष पहले था वो हो जाए, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो मन कोई फिजिकल चीज नहीं है, ब्रेन तो बिल्कुल फिजिकल है, उसका हर प्रकार से मैपिंग भी हो चुका है कि कौन से स्थान पर किस प्रकार से वो ब्रेन काम करता है, परंतु मन ब्रेन से कुछ अलग है। आत्मा के अंदर वो शक्ति है, पास्ट में भी चले जाओ, फ्यूचर में भी चले जाओ, डिस्टेंसेस में भी क्रॉस कर लो, एक स्थान पर बैठे बिल्कुल, अभी मैं अमेरिका पहुंच जाती हूं और जिसके साथ मेरा संबंध होगा, मुझे वही सीन इमर्ज होंगी, उनका घर कैसे है, उनका कमरा कैसे है, और वो जो मैं उस व्यक्ति को याद कर रही हूं, मेरे संकल्प उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, और उसी घड़ी फोन आता, वो हमसे पूछते हैं कि आप ठीक है, आप मुझे याद तो नहीं कर रहे थे, और सचमुच हमारी याद उन तक पहुंच गई थी। तो कहने का मतलब, जब तक हमने आत्मा को नहीं समझा है, तब तक हम मन को नहीं समझ पाएंगे, और इस कारण से जब हम मन को समझ करके योग लगाते हैं, तो फिर ये जो विकारी संकल्प आते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं, और फिर ज्ञान के शक्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं, शुद्ध संकल्प क्या होते हैं, वो जानकारी आने से फिर हम वो श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु नेगेटिव और पॉजिटिव की सिर्फ बात नहीं है, उस बीच में कुछ और दर्जे भी आते हैं। मानो कि अभी शांति से मैं बैठी हूं और अब मेरा ध्यान चला गया उस व्यक्ति पर, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए, यहां पर तो उनको शांति से बैठना चाहिए, ये क्यों इतना गमसान कर रहे हैं, तो मेरा कुछ उनके साथ कनेक्शन नहीं है, कुछ मेरा उनके साथ मतलब नहीं है, परंतु कानों ने सुना, आंखों ने देखा और मन उस तरफ भाग गया। जो मुझे अपना काम मिला हुआ है कि मैं खुद को देखूं और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ूं, वो काम मेरा छूट गया और ये फालतू काम में मेरा मन चला गया। तो जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उससे तो आत्मा की बहुत एनर्जी वेस्ट होती। नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो हमारे हेल्थ पर उसका असर आता। आप सोचो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनों का बिल्कुल ही हेल्थ के साथ कनेक्शन होता। परंतु जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उससे भी हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हमारे वाइब्रेशन बहुत लो लेवल के वाइब्रेशन होते हैं, फालतू। अभी मैं कितना भी संकल्प करूं, वो व्यक्ति वहां से उठने वाला तो नहीं है, जब तक उसका दूसरा टाइम आए, दूसरा कार्य शुरू हो, वो वहां पर ही बैठा रहेगा। कितना भी मैं संकल्प करूं, मैं तो उसको हिला नहीं सकती हूं, और यदि मैं कुछ कहूं भी तो भी उसको पसंद नहीं आएगा, और ही हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, तो कहने से भी नहीं होगा। परंतु मुझे क्या करना है, मुझे ये सोचना है कि ये मेरे संकल्प एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, वो मुझे कुछ कर नहीं रहा है, तो मैं फालतू अपनी एनर्जी को उसके पीछे वेस्ट कर रही हूं। तो जब पहचान आ जाती है कि वेस्ट संकल्प से कितना मेरा खुद का नुकसान होता, तो हम फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते। फुल स्टॉप ही तब लगा सकते जबकि अपनी ब्रेक इतनी पावरफुल हो, तो वो शक्ति हमें सर्वशक्तिवान बाप से मिल सकती। जैसे राजयोग का बताया, इनवर्ड्स अपवर्ड्स, बस उस सर्वशक्तिवान बाप से, निराकार शिव परमात्मा से हम शक्ति लेते जाएं, और जितनी हम शक्ति लेंगे उतना हम अपने संकल्पों पर कंट्रोल कर सकेंगे। नहीं तो संकल्प तो बहुत फास्ट चलने वाले हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं। तो जब हम इतनी एनर्जी परमात्मा से लेते हैं, शक्ति लेते हैं, तो फिर जब हम फुल स्टॉप लगाने चाहें, ब्रेक लगाने चाहें, वो हमारा ब्रेक काम करेगा। इंटरनल शक्ति परमात्मा से ली हुई नहीं है तो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड वही संकल्प मुझे हैरान करेगा। सवेरे भी यही मेरा सोच चल रहा था, अभी रात्रि तक भी वही मेरा सोच चल रहा, हालांकि उसका कुछ नतीजा नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं, परंतु फालतू मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही। तो परमात्मा से योग लगाएं, हमें पहचान हो कि नेगेटिव क्या होता उसको समाप्त करें, वेस्ट क्या होता उसको हम फुल स्टॉप लगा लेवे। फिर आते हैं साधारण संकल्प, खाना है, चलना है, बैठना है, उठना है, ये जो एक्सटर्नल बातों के कनेक्शन से हमारे संकल्प चलते हैं, जो इनफैक्ट जरूरत नहीं होती। टाइम पर उठना है, फिर टाइम पर जो कुछ तैयारी करनी है दिन भर उसकी तैयारी करनी है, जो अपना काम मिला हुआ है चाहे घर पे चाहे बाहर, वो मुझे काम करना है, परंतु पहले से ही उठते ही मैं ये सोचूं ये करना ये करना ये करना, कर किया कुछ नहीं है, परंतु बुद्धि को इतना चलाया जो फिर उसमें ही हम थक जाते, कुछ किया नहीं परंतु आत्मा को थकान हो गई। और दूसरी तरफ आपको कोई बात की बहुत खुशी है, उस खुशी खुशी में जो काम आया आप फास्ट करते चलेंगे, आपको बिल्कुल भारीपन नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम सदा ऐसे अपनी स्थिति को खुश मिजाज रखें जो कोई काम हमें कभी भारी न लगे। तो ऑर्डिनरी थॉट्स को भी हमें चेंज करना होगा, साधारणता अभी हमारे जीवन को ठीक नहीं लगता, परंतु हम श्रेष्ठ संकल्प करें, ज्ञान युक्त संकल्प करते हैं तो उससे हमारी बहुत एनर्जी बढ़ जाती। और योग जब हमारी वो स्थिति योग की आती है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल लगन की अगिन, योग अगिन, तो उस योग अगिन में आत्मा सचमुच इतना प्यूरिफाई होती जो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्प भी शुद्ध हो जाते। उसका मतलब क्या? उसका मतलब कि योग अगिन द्वारा हमने अपने जो आज के संस्कार है उन सारे संस्कारों को शुद्ध बना लिया। आप सोचो संकल्प कहां से आता? संकल्प अपने आप नहीं आता, या संकल्प कोई बाहर की चीज देखने से नहीं आता? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, परंतु संकल्प उस पर रिस्पॉन्स, जो हमने देखा जो सुना उसके रिस्पॉन्स में हमारा कुछ संकल्प उत्पन्न हुआ। तो संस्कारों को भी हमें शुद्ध करना होगा, तब हमारी मेंटल सैनिटाइजेशन होगी। मेंटालिटी में हम कहेंगे हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स और साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स, ये दो बातें आती है, दोनों का कनेक्शन है। कोई भी थॉट को आप वही चलाते रहो तो उसमें फिर क्या होगा कि वो फीलिंग बन जाती, फिर सिचुएशन चेंज भी हो गई, परंतु यदि मेरी नेगेटिव फीलिंग आ गई तो सिचुएशन चेंज होने के बाद भी वो नेगेटिविटी जो अंदर में आ गई, फीलिंग्स में आ गई, मेरा चेहरा बिल्कुल खुश नहीं रहेगा, मेरी बातचीत भी अभी तक खुशी की नहीं रहेंगी, और ही मेरे मुख से कुछ ऐसे पत्थर निकलते रहेंगे जो मैं औरों को भी दुख देती रहेंगी। तो अब यदि मुझे ये ध्यान है कि मुझे संकल्प को बिल्कुल बाद में हम चेक करके चेंज करें, उसमें भी एनर्जी गई, परंतु पहले से ही एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से हमारे श्रेष्ठ संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो, वो तब जबकि हमने संस्कारों का परिवर्तन किया होगा, तो फिर ऐसे श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते रहेंगे। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये गलत बात है, अभी इस ट्रैक पर नहीं चलना है, वापस लौटे जब तक लौटे उसमें टाइम चला गया, और फिर दोबारा जर्नी शुरू करो फिर उसमें और टाइम गया। तो अभी समय वो है जबकि परमात्मा हमें बता रहे हैं कि संस्कार अनुसार संकल्प उत्पन्न होते। मानो कि हमारे संस्कार बिल्कुल इनोसेंट है, प्योर है, कोई हमारे सामने बंदूक लेके आए, मुझे पहचान होंगी कि ये बंदूक है, पता नहीं चलेगा। मुझे याद आता है कि एक बारी हम होली के प्रोग्राम में थे माउंट आबू में, और होली प्यार से खेल रहे थे, गुलाब जल से, कोई और ज्यादा रंग नहीं था परंतु गुलाब का जल और उसमें सैफ्रन, तो वो बहुत सुंदर रंग भी था परंतु खुशबू भी थी। तो हमारी दादी जी, दादी प्रकाशमणि उस समय थे, तो किसी ने दादी को एक वाटर पिस्टल दिया, उसमें वो पानी डाला हुआ था कि दादी आप होली इससे खेलो। दादी वो चीज उठाए, यहां से पकड़ू यहां से पकड़ू, दादी को पता ही नहीं था पिस्टल क्या होता। इतनी दादी प्योर और इनोसेंट, क्योंकि बचपन से ही दादी का जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुआ था, और फिर तो बाबा के साथ 14 वर्ष रहे, फिर जब सेवा पर निकले तो भी अपना सेवा का कार्य किया, बाकी योग लगाया, तो न फिल्म देखी न टेलीविजन देखा, कोई भी बात का दादी के दिमाग के ऊपर कुछ इन बातों का असर नहीं था। तो छोटा सा टॉय पिस्टल भी दादी ने पहचाना नहीं कि ये क्या चीज है। तो कहने का मतलब कि संस्कार में ही वो बात नहीं है तो फिर संकल्प में भी वो बात नहीं आ सकती। संस्कार ही शुद्ध बन गए तो वो चीज सामने आएंगे भी तो भी हमारे संकल्प नहीं गलत चलेंगे। और आज के छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे को भी पिस्टल दे दो, बैंग बैंग, वो आपको तुरंत ऐसे वो समझेगा कि ये तो बहुत बढ़िया खिलौना मिला है, और वो उसे खेलता रहेगा। तो जैसे जैसे संस्कार है, सिचुएशन जो भी आती है, हमारा रिस्पॉन्स उस संस्कार अनुसार होता। 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति में से मानो कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है, अभी एक व्यक्ति सामने आता और वो उस जो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति है, विक्टिम है, उसके पल्स को देखने लगता कि इसका पल्स ठीक है या नहीं है, तो आप उसके बिहेवियर से समझ सकते हैं कि ये शायद मेडिकल बैकग्राउंड वाला है। दूसरा कोई व्यक्ति आता और वो अपना नोटबुक निकालता और सब नोट करता जाता, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उनसे पूछता उनसे पूछता, तो लगता है कि हाँ कुछ पुलिस इंक्वायरी वाला व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति आता और वो तुरंत गाड़ी को देखने लगता, जो व्यक्ति यहाँ गिरा हुआ है उसको नहीं देखता, वो गाड़ियों को देखता है कि कहाँ टक्कर हुआ, कैसे टक्कर हुआ, अभी उसको कैसे अलग अलग करें, आप समझ जाएंगे ये मैकेनिक है। चौथा व्यक्ति आया, उसने देखा कि ये मेरा संबंधी है तो वो तो रो पड़ा। तो सेम सिचुएशन, संकल्प अलग अलग, कर्तव्य अलग अलग, कारण संस्कार अलग अलग। तो न केवल हमें अपने संकल्पों को सैनिटाइज करना है, परंतु और बड़ा भारी कार्य करना है जिसको हम कहेंगे संस्कारों को सैनिटाइज करना। तो फिर हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्थिति है, सैनिटाइजेशन है, वो सफल हो सकती। जब तक संस्कारों को प्यूरिफाई नहीं किया, सैनिटाइज नहीं किया, तब तक वो स्टेज नहीं आ सकती। तो संस्कारों को सैनिटाइज करने का साधन है योग अगेन। परमात्मा के साथ इतना हमारा घनिष्ठ संबंध हो जो बस परमात्मा को याद करें और उस योग अग्नि से आत्मा प्यूरिफाई होकर के फिर श्रेष्ठ संकल्प चलते रहेंगे, उसमें और कोई प्रकार का संकल्प चल ही नहीं सकेगा। तो सैनिटाइजेशन न सिर्फ हमें हाथ का करना है, अपने रहने की जगह का करना है, परंतु मेंटालिटी को भी हमें ठीक रखना है। प्योर थॉट्स, प्योर फीलिंग्स, प्योर संस्कार्स। तो एक एक चीज को हम ध्यान दे करके, एक एक बात को हम इस तरह से सैनिटाइज करते रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से उन्नति होती रहेंगी, आगे के लिए बहुत सारी प्राप्ति भी होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तो हर प्रकार से इंसान की तबीयत भी अच्छी रह सकती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहेंगी ही, परंतु फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और यदि मेंटल सैनिटाइजेशन है तो उसमें हम सदा अपने को खुशी में रख सकते हैं, शांति में रख सकते हैं। कोई भी सिचुएशन में हमारे मन में बहुत क्लियर बात समझ में आएंगी कि अभी हमें अब क्या करना है। शुद्ध मन है तो हरेक के साथ संबंध, हमारा व्यवहार भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा, जिसमें हम हर आत्मा को सुख दे सके। तो आज के समय स्पेशली राजयोग सीख करके और मन और संस्कारों को शुद्ध बनाकर रखें बहुत ही आवश्यक है। अभी कुछ चंद घड़ियों के लिए हम परमात्मा की याद में बैठते हैं और मैं अपने संकल्प बताती जाएंगी, और आपको मैं निमंत्रण देती हूं कि आप भी उन संकल्पों पर इसी तरह से विचार करें। शांति में बैठे मैं अपने को शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा मानती हूं। आदि स्वरूप मुझ आत्मा का शांति और पवित्रता। शांत स्थिति में सहज ही परमात्मा की याद आ सकती है। परमात्मा की याद के द्वारा मन को ऐसी शक्तिशाली ताकत मिलती जो आत्मा अपने को शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप किसी भी प्रकार का, न मैं किसको दोष दे रही, न मेरे ऊपर दोष का कुछ कलंक लगता। मैं हूं ही शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। अब इस स्थिति द्वारा सर्व के साथ अति मीठा, अति शुद्ध संबंध चलता, अब उस परमात्मा के कनेक्शन से निराकार, कल्याणकारी, शिव परमात्मा के संबंध से ऐसी शक्ति सारे विश्व को मिल रही, न केवल मेरा मन शुद्ध पवित्र शांत होता, परंतु सबके वाइब्रेशंस ऐसे ही नजर आ रहे। ओम शांति। यदि इस प्रकार से हम हर रोज थोड़े समय के लिए सवेरे शाम अभ्यास करें तो मन सदा ही हमारा शुद्ध शांत श्रेष्ठ रह सकता। थैंक यू। ओम शांति।
कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन स्वस्थ है शक्तिशाली है तो सचमुच हमारे लिए सब कुछ संभव है। संसार में सब कुछ हो लेकिन मन ही अस्वस्थ हो, मन में ही यदि गंदगी हो, मन में ही यदि कचरे हो, तो फिर हम संसार का, समाज का, अपने संसाधनों का जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका आनंद नहीं ले सकते। बहुत सुंदर प्रकाश, आदरणीय सिस्टर जयंती जी ने मेंटल सैनिटाइजेशन पे दिया। दीदी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर और भी गहराई से हम जानते हैं और शुभकामनाएं लेते हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार निर्वैर भाई जी से, जो कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप अपनी युवावस्था से ही इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ गए थे और आप पूरे भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन संसार के कोने कोने तक अध्यात्म को पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका है। आदरणीय भ्राता जी की शुभकामनाओं के पश्चात हम सैनिटाइजिंग द रिलेशनशिप इस विषय पर सुनेंगे भ्राता भारत भूषण जी से, जो कि साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आइए अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और ब्रह्मा पिता की अलौकिक संतानों, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, खासकर हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग के चेयरपर्सन भ्राता मोहन सिंगल जी और आपके साथ में आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, जो आपने कोरोना के रोने के टाइम पर खास लोगों की हिफाजत के लिए सैनिटाइजेशन के ऊपर खास ये कॉन्फ्रेंस रखी है। तो उन्होंने बॉडी की सैनिटाइजेशन, एटमॉस्फेयर की सैनिटाइजेशन और फिर आत्मिक सैनिटाइजेशन, ये तीन बातों को लेकर के खास ये कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मैं ऐसे हमारे मोहन भाई सिंगल को, जो नए नए आइडियाज लेकर के हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे तो इतने ही दो शब्द कहने हैं कि सैनिटाइज हाथों या एटमॉस्फेयर या मन को करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इतना जरूर कहूंगा कि परम पिता परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ मन लगा करके स्वयं में मनोबल भरना बड़ा जरूरी है। कुछ भी आ जाए तो डरे नहीं और जितना हो सके हर बात में मन को बहुत ऊंची स्थिति में, पॉजिटिव स्थिति में रखेंगे तो ये भी जो सामने इस तरह की थोड़ी सी सबके सामने दिक्कत आई है, देश विदेश में सारे विश्व के अंदर कोरोना का प्रकोप है, तो मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग से, एक तो साइंटिस्टों के सहयोग से और उसके साथ इंजीनियर्स के क्या सहयोग से और फिर इसके साथ में सारे समाज का जो एक इस समय का स्वरूप है, मैंने देखा हर एक बड़ी दिल से सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, तन से मन से धन से, ताकि कम से कम कैजुअलिटीज हों और हर कोई अच्छी सेहत प्राप्त करके जीवन जिए और ये कोरोना का वायरस दुनिया से खत्म हो जाए। कई सारी नई नई वैक्सीन बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की निकली हैं, वो भी दी जा रही है, उससे भी लगता है काफी फायदा हो जाएगा। और फिर भी जिनके रिलेटिव्स, जिनके फ्रेंड्स जिन्होंने शरीर छोड़ा है, किसी की माता ने, किसी के पिता ने, तो उनके लिए मैं अपनी जिगरी सांत्वना पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ यही कहूँगा कि अगर हम अच्छी तरह से गाइडलाइंस, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स गाइडलाइंस देते हैं, उनको अगर हम फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ हम इस महामारी के काल को पार कर जाएंगे। तो आप सब भाई बहने जो भी जुड़े हुए हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग से, उन्होंने, मैंने देखा कि जैसा जैसा समय होता उसके अनुसार वो कॉन्फ्रेंस की टॉपिक तय करते हैं, तो इसका श्रेय तो हमारे मोहन भाई को जाता या उनके साथियों को, तो मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। होलिस्टिक सैनिटाइजेशन, बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग की ओर से किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस को, ई कॉन्फ्रेंस को इस टाइम पर इसकी अत्यंत आवश्यकता है, और यह आप सबको जान के बहुत खुशी हुई होगी। समय प्रमाण अगर कोई चीज मिलती है उससे मन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि इस समय मन में होलिस्टिक सैनिटाइजेशन का मतलब ही क्या है। सैनिटाइजेशन मीन स्वच्छता, मीन कुछ डर्ट आ गया है, कुछ मैल आ गया, उसको क्लीन करने की जरूरत है, कुछ जर्म्स आ गए हैं। तो क्योंकि आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले मार्च से, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, तब से लेके पूरा विश्व, न केवल भारत, न केवल आप और हम, न केवल हमारा देश, बल्कि सारा विश्व इस समस्या के साथ अच्छी तरह से झूंझ रहा है। और झूंझते झूंझते, स्ट्रगल करते करते, कहीं तो पूरे उमंग और उत्साह से चल रहे हैं, ब्रेवो, बढ़े चलो, करते चलो, हिम्मत और उत्साह और संयम और नियम सब चीजें अपनाते हुए, उनके हौसले और बुलंदी पूरे चोटी पर हैं, उनको जरा भी कहीं भी निराशा या उनके उत्साह में कमी नहीं आई। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो निरुत्साहित हो गए हैं, इस सीन को देख ही नहीं पा रहे हैं, उस दहशत इतनी फैल गई है जिसके कारण जो है इससे इतना दहशत फैली हुई, उसमें कईयों को बीमारियों ने आ घेरा है। इंडियन साइकेटिक एसोसिएशन के अनुसार 25% डिप्रेशन के रोगी अधिक बढ़ गए हैं। कहते एक राजा था, उसके राजा में वो मौत ने दस्तक दी। राजा बहुत दानी और बड़ा खुशहाल राज्य था कि मैं तुम्हारे राज्य में आ रही हूं और मैं 500 व्यक्तियों को काल बन के आ रही हूं, 500 व्यक्ति। उसने कहा नहीं 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 आओ। कि नहीं, मेरे को आना मेरा निश्चित होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, देख लो, दया करो। तो नहीं, वो हा ओके आई। और आई उसने, जब वो एक मास के लगभग रह के, उसने कहा मैं जाऊंगी। कब जाओगी? एक मास रह के जाऊंगी। जगह जगह बीमारी फैलाई और भिन्न भिन्न तरीके, जैसे भी लोग मरे। जाते हुए राजा को कहा मैं जा रही हूं, कि तुमने तो कहा था मैं 500 को मार के जाऊंगी, 500 को लूंगी, तुमने इतने लोगों को मारा, 5500। कहते नहीं, मैं 500 का ही काल बनकर आई थी, बाकी जो 5000 मरे हैं वो अपनी दहशत के कारण, अपनी भय के कारण वो इस सीन को सहन नहीं कर पाए और डर और भय से अटैक हो गया उन्हें या कुछ और हो गए रोग उन्हें। तो एक कहने की बात यह कि कुछ तो आपदा आती है, लेकिन कुछ सोच 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 के हम आपदा, अपने मानसिक आपदा पैदा कर देते हैं। इसलिए इस टॉपिक की अवश्य जरूरत पड़ी। होलिस्टिक सैनिटाइजेशन, अर्थात जो ये हमारे नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव थॉट्स और भिन्न भिन्न प्रकार के और हर वक्त इस कोरोना से कनेक्टेड थॉट ही हर वक्त चलते रहना, तो उससे क्या है, वहां सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ गई है। और होलिस्टिक, फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, स्पिरिचुअल भी, सारी चाहिए हमें, इमोशनल भी। तो आज उसका एक सब टॉपिक है, सैनिटाइज योर रिलेशंस, मतलब कि अपने संबंधों में भी, खासकर ये जो जरूरत पड़ती है वो संबंधों में ही आती है, कहीं घर बैठे बैठे संबंधों में ही, अब क्योंकि खाली बैठे हैं, खाली मन शैतान का घर, तो इतना तक हो गया, कहीं इतने पागल हो गए घर वालों के साथ लड़ना, मारना, पिटाई करना, इरिटेट हो जाना, वो करना, तो सैनिटाइजेशन की जरूरत है। संबंध उससे बिगड़ गए हैं, संबंधों में बहुत वो हो गया है, तो ये संबंधों में स्वच्छता कैसे लाएं, संबंधों में क्या ऐसा करें। और इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे, जो संबंध इतने पवित्र होते थे, भारत की एक संस्कृति जिसमें झलकती थी, पिता पुत्री का संबंध, भाई बहन का संबंध, इतने पवित्र संबंध, आज भी काफी हद तक इन संबंधों में पवित्रता कायम है, लेकिन बहुत दुख होता है, अफसोस होता है जब कभी कभी पेपर्स में इन संबंधों में भी अस्वच्छता जब आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, तो एकदम समझ में आता है कि सैनिटाइजेशन की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। इतना मैल, मनुष्य का मन इतना इस गिरावट तक आ जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं किडनैपिंग हो रही है, और कितने दर्दनाक वो चीजें होती हैं, तो वहां सैनिटाइजेशन की जरूरत होती है। इसलिए इस चीज को सामने रख के हम किस तरीके से अब इसको कैसे करें, संबंधों में बहुत स्वच्छता कैसे लाएं, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें, सबसे पहले तो किस किस रूप में इसमें अस्वच्छता आई, डर्टीनेस आई, वो क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहला संबंधों में सेल्फिशनेस जो आ जाती है ना, वो जो है वो ठीक नहीं है। मनुष्य के संबंधों में अगर संबंध में सेल्फिशनेस आई, स्वार्थ आया, तो ये समझ लिए संबंध में डर्टीनेस आ गई। वो आपकी इंटेंशन सबको समझ आ जाएगी कि हाउ यू आर हियर एंड देयर एंड ऑल अराउंड मी, फॉर व्हाट इज योर इंटेंशन, ही विल कैच एंड चेक इफ आई एम क्लोज टू एनी वन, इज देयर एनी इंटेंशन, माई इंटेंशन ऑफ सेल्फिशनेस, चेक करें। अगर वो है तो वी शुड रिमूव दैट, हमारा एक सेल्फलेसनेस होना चाहिए ना, हमें कभी भी सेल्फिशनेस के कारण किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, हमें सदैव फ्रेंडशिप रखनी है, तो सेल्फलेसनेस के कारण। इसलिए संबंधों में स्वच्छता लाने के लिए हम सेल्फलेसनेस एक जीवन में लाएं, इस सेल्फिशनेस को खत्म, किसी के भी आप चेक करें अपने हर रिलेशन में, क्योंकि मुझे इससे फायदा हो रहा है इसलिए मैं इसको रिस्पेक्ट दे, नहीं, मुझे हर एक आत्मा की विशेषताओं का सम्मान है इसलिए नहीं, मेरा जीवन ही सदा सबको सम्मान देने का, कोई मेरा विरोधी भी है तो उसको भी मुझे सम्मान ही देना है। तो दिस इज द विदाउट सेल्फिशनेस, रिलेशन इज विदाउट सेल्फिशनेस। सेकंड, ईगो इन रिलेशन, जहां रिलेशन में थोड़ा भी ईगो आया, लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, लोग आपसे दूर होते जाएंगे, तो वी शुड बी ईगोलेस, हमें निर्माण चित्त होना चाहिए, हमें निरहंकारी होना चाहिए, हमारे अंदर कभी भी अहम ना आए, कितने भी बड़े और महान बन जाएं, लेकिन फिर भी हम बच्चा बन के रहें अपने बड़ों के सामने, इसे कहते हैं ईगोलेस, निरहंकारी। हमारे पिता श्री ब्रह्मा हमेशा कहते थे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑलवेज सेइंग, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट. हु एम आई? आई एम नॉट चेयरपर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई एम नॉट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. हेड तो निमित्त बहनों को बनाया हुआ था. हु एम आई? आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट. मैं एक आज्ञाकारी सेवक हूं. ये एक बात बुद्धि में सदैव रखनी चाहिए. तो सदा अपने आप को जीवन में ऐसा बना के चलेंगे तो बहुत ही मान इगोलेस इगोलेस. इफ समवन इज गिविंग लेसन, ओके एक्सेप्ट. इफ देयर इज समथिंग, उसे जरूर एक्सेप्ट करें इगोलेस बन के. कोई शिक्षा देता है तो उसे स्वीकार करें. इसी तरीके इगोलेस. कोई क्रिटिसाइज करता है, ओके चेक एंड चेंज. इफ देयर इज समथिंग चेंज इट. डोंट आर्ग्यू. कुछ ना कुछ आप पाएंगे, आप महान बनेंगे. तो दिस इज द इगोलेस. कितना भी कुछ आप करें, डोंट एक्सेप्ट एनी अप्रिशिएशन. डो नॉट एक्सेप्ट एनी अप्रिशिएशन. तो इन चीजों से हम इगोलेस बनते जाएंगे. काम खुद करें और नाम औरों का करें, इसको कहते हैं इगोलेस. तो अपने आप को निरहंकारी बनाकर चलना है. ये हमें तो उससे हमारे संबंधों में बड़ी बहुत ही स्वच्छता आ जाएगी. लेकिन जहां ईगो होता वहां कितना एक दूसरे का नुकसान करते, लेग पुलिंग करते, एक दूसरे को नीचे गिराते, तो फिर वहां पर फिर डर्टीनेस आ जाता, संबंध बिगड़ जाते और फिर सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ती. इसी तरह इम्प्योरिटी इन रिलेशन. हमारे रिलेशन में सदा ही प्योरिटी रहे, हमारे संबंधों में सदा ही पवित्रता रहे. और उसके लिए हम बॉडी कॉन्शियसनेस में कभी ना जाएं, कभी किसी की बॉडी पर, जो कि एक पंच तत्वों का पुतला है, अंदर उसके हार्ड मास खून क्या क्या पड़ा है, उस पर अट्रैक्ट होना, हे मनुष्य ये तेरी बहुत बड़ी भूल है. हर एक चाहता है मेरी बहन मेरी मां को सब एक श्री लक्ष्मी की तरह देखें. लेकिन क्या अधिकार है तुमको कि तुम किसी की बहन या किसी की मां को कुदृष्टि से देखो? तो देयर शुड बी नो इम्प्योरिटी इन रिलेशन. इस जगत पिता, जगत परमात्मा का पिता माता वही है, उसके हम सब संतान आत्माएं हैं. हमारा पवित्र संबंध, आत्मिक नाता भाई भाई की दृष्टि का होना चाहिए. तो उस संबंध में इम्प्योरिटी का आ जाना ये भी ठीक नहीं है. वो रिलेशन में सैनिटाइजेशन की जरूरत है कि हमारा संबंध सदा ही प्योर रहे. तो आज मैं आपके सामने उसके व्हाट आर द स्टेप्स टू सैनिटाइज योर रिलेशन. इस कोरोना बीमारी में सैनिटाइजर शब्द बड़ा कॉमन हो गया है. हैव यू सैनिटाइज योर हैंड्स? सैनिटाइजर है तुम्हारे पास कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग? हाथों पर जर्म्स हो जाते हैं. सैनिटाइजर, हु विल क्लीन ऑल द जर्म्स? दैट इज द सैनिटाइजर. बट व्हाट आर द स्टेप्स टू सैनिटाइज आवर रिलेशन? रिलेशन में बहुत ही स्वच्छता रहे, नो डर्टीनेस. उसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स? तो आई विल एक्सप्लेन. ऑल आर अवेलेबल इन द वर्ड सैनिटाइज. व्हाट इज द सैनिटाइज? एस स्टैंड फॉर सोल कॉन्शियसनेस. हमारे जो संबंधों में इम्प्योरिटी आई, व्हाई? When we thought that I am body, I am male, she is female, I am female, she is male, ये body consciousness से इस संबंधों में impurity आई. किसी के रूप की ओर भगवान कहते आकर्षित ना हो, रूह को देखो. और रूह को ना देख के केवल रूप को देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है. तो इसलिए soul consciousness always. मैं कभी कभी अंदर ही मन में मुस्कुराता हूं, बीइंग पॉजिटिव पर्सनैलिटी होने के कारण. हमारा ड्रेस यहां तक तो ढका होता है बदन, अब कोरोना पीरियड में मास्क ने इतना ढक दिया है, कईयों को बहुत बुरा लगता है, ना शक्ल मेरी नजर आती है, ना मैं किसी की देख पाता हूं, हे भगवान ये कौन सा टाइम चल रहा है, इसको कहेंगे नेगेटिव थिंकिंग, और कहीं पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं, अरे वेरी गुड, वी डोंट वांट टू सी द फेस, ये छिपा दिया। अब भगवान ने दृष्टि जरूर चाहिए, दुआओं की दृष्टि वो सबको देनी भी है, वो छोड़ दी भगवान ने, और यहां पर सोल बैठी है, SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट, आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। तो भगवान ने ऐसा बना दिया परिस्थिति ने, सी हेयर नॉट एनीवेयर, किसी भी फेस में और कहीं नहीं देख, तो फेस की सुंदरता को देखेगा तो इधर ध्यान हट जाएगा, उन सब से ध्यान हटाने के लिए एक मास्क लग गया कि कीप अटेंशन, शाइनिंग स्टार को देखना है। तो सोल कॉन्सियसनेस, आई एम ए सोल, ए पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज ऑल्सो ए शाइनिंग स्टार, ए पॉइंट ऑफ लाइट, वी आर बोथ सोल, चिल्ड्रन ऑफ द सेम सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल। तो ये अगर हमें याद रहेगा, हमारे संबंध इतने अच्छे हो जाएंगे, सैनिटाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा हमारा रिलेशन, क्योंकि कोई बड़ा छोटा नहीं, पार्ट है केवल, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम सब भाई भाई, फिर ईगो तो खत्म हो गया ना, वी आर ब्रदर्स, वी आर ओनली प्लेइंग द पार्ट, किसी का हीरो पार्ट है, किसी का कोई है, किसी का छोटा है, लेकिन दे आफ्टर पार्ट के तो दोनों एक समान है, तो हम सब परमधाम में एक समान ही थे, वी आर इक्वल, बट इट इज ओनली द रोल विच इज अलॉटेड टू अस, हम सबको जो रोल मिला हुआ है, तो इसलिए हम अपने सारे डर्टीनेस से खत्म हो जाएगी, ओनली प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ए सोल ए पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज ए सोल, आई एम ए सोल, एवरी वन ए सोल, वी आर स्पिरिचुअली ब्रदर्स, ये बात बुद्धि में रखेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा एक सैनिटाइजिंग द रिलेशन। नेक्स्ट ए मीन अटेंशन, एक्टिव एंड अलर्ट, अटेंशन। आज भी कोरोना की महामारी चल रही है, कई लोग तो अटेंशन रख रहे हैं, जो जो हिदायतें गवर्नमेंट से मिली, इंस्टीट्यूशन से मिली, पूरा पालन कर रहे, मास्क रखते हैं, और साथ साथ मैं भी हमेशा रखता हूं, केवल अभी रिकॉर्डिंग में मैंने उतार के जेब में डाला है, तो मास्क भी रखते हैं, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं, ब्रह्म कुमारीज में कितना बड़ा ध्यान रखा जाता है, और सैनिटाइज भी करते हैं, तो उससे क्या है, वी शुड कीप अटेंशन, कहीं परवाह नहीं करते, अरे किसने देखा, अरे छोड़ो जी, कहां, कुछ नहीं फर्क पड़ता कुछ, और अपना जीवन वो गवा बैठे, थोड़ी सी लापरवाही जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, इसमें कोई अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं मेरा कोई करुण, ऐसे बहुत लोगों ने जीवन गवाया, अब की बार उन्होंने परवाह नहीं की, नियमों की परवाह नहीं की, मिलने मिलाने की परवाह नहीं की, अंततः चपेट में आ गए, और बहुत मुश्किल फिर बच नहीं पाए कहीं, इसलिए अटेंशन एंड अलर्ट, बी अलर्ट, बहुत तरफ से ऐसी चीजें आएंगी मजबूर करेंगी, बी अलर्ट एंड एक्टिव, और रिलेशन में भी यही चीज है, वी शुड कीप अटेंशन दैट वी आर सोल कॉन्सियसनेस, वी आर स्पिरिचुअली ब्रदर, उसमें कहीं सेल्फिशनेस ना आ जाए, कहीं कुछ और ना आ जाए, ये अटेंशन जरूरी है, और बी एक्टिव, फिर एक्टिव भी रहें और अलर्ट रहें साथ साथ, लेजीनेस से सारे विकार आते हैं, लेजीनेस नहीं आने चाहिए, और अलर्ट भी बहुत रहें। तो ये नेक्स्ट था एन स्टैंड फॉर नथिंग न्यू मीन दिस इज ए वर्ड ड्रामा साइकिल एंड इज बीइंग रिपीटिंग आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स, इट इज द ब्रह्म कुमारीज स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमें स्वयं सुप्रीम गॉड फादर ने बताया कि कोई भी चीज में आश्चर्य नहीं खाओ, दहशत फैल जाएगी, ये होगा नहीं, आई हैव सीन दिस सीन मेनी टाइम्स, जैसे अभी भी लोग पेशेंट्स लाने के लिए समझदार लोग कहते हैं, अरे भाई ये कोई बड़ी बात नहीं, 100 साल पहले भी ऐसे बीमारी आई थी, 100 साल बाद रिपीट होती है, डोंट वरी, नथिंग न्यू। ऐसे हमें परमात्मा भी यही कहते हैं, बच्चे एवरी ड्रामा साइकिल इज रिपीटिंग 5000 ईयर, सेम सीन सेम सब कुछ आ रहा है, तो नथिंग न्यू। हमेशा ध्यान रखो, आपने इस परिस्थिति को एक बार नहीं हजारों बार अनगणित बार पास किया, आपके लिए क्या बड़ी बात है, दिस इज नथिंग न्यू। हाय ऐसा क्या हो गया, कभी भी नहीं सोचो, अरे नथिंग न्यू, अनेक बार हुआ ही रिपीट हो रहा है। तो दिस इज द एन, नेक्स्ट इज द आई, आई स्टैंड फॉर इंट्रोवर्टनेस, इंट्रोवर्टनेस साइलेंस, साइलेंस, रिलेशन इतने अच्छे होंगे, साइलेंस इज गोल्ड। जो व्यक्ति चुप रहता है, कहते एक चुप सो सुख, मुस्कुराता रहता है, सुनता अधिक है सुनाता कम है, तो वो भी बहुत ही महान बन जाता। कोशिश करें सप्ताह में एक दिन मौन रखें, कोशिश करें सुबह 8:30 से पहले, 8-9 बजे से पहले बिल्कुल मौन रखें, तो बहुत आनंदित रहेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन टी स्टैंड फॉर ट्रस्टीशिप। हमें भगवान ने जो भी कार्य दिया, जो भी कुछ दिया है, गॉड के हम ट्रस्टी हैं, उसकी अमानत है। तो इन संबंधों में भी ये उसी के बच्चे हैं, अगर इनको मेरा समझेंगे, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, तो यू आर नॉट ट्रस्टी, डिसऑनेस्ट पर्सन, फिर संबंधों में खराबी आ जाएगी। नहीं मेरे नहीं है, ये उसी के हैं, मुझे इनकी ड्यूटी दी है, मुझे वो ड्यूटी करनी है। आई एंड माई, ये दोनों चीजें ही सारा डर्टीनेस लाती हैं रिलेशन में। तो आई को भी खत्म करना है और माई को भी, मेरा मेरा मेरा, नहीं मेरा बेटे मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते, फिर टेंशन, फिर परेशानी, फिर सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक ये चीज जरूर रखें, तो उससे भी ट्रस्टीशिप। देन अगेन आई, आई फॉर इंस्पायरिंग, आपकी लाइफ में डिप्रेशन निकट नहीं आएगा अगर आप इंस्पायरिंग नेचर होगे, एवरी टाइम इंस्पायरिंग। नेगेटिव सिचुएशन भी आपको पॉजिटिव की ओर ले जाए, आपके लिए तूफान एक तोहफा बन जाए, ऐसा आपको लगे वाह, गॉड हैज गिवन मी ए टाइम टू इंप्रूव माई सेल्फ, टू फॉर सेल्फ प्रोग्रेसिंग। तो इसलिए आपका लाइफ ही पूरा इंस्पायरिंग लीडर की तरह होना चाहिए, ऑलवेज इंस्पायरिंग में रहने वाले। जेड जेड जील एंड एंथुजियम, खुद भी इंस्पायर्ड रहो औरों को भी इंस्पायर करो, एंथुजियम जील, बड़े बड़े अच्छा उमंग और उत्साह भरा जीवन होना चाहिए, तो उससे बहुत महान बन जाएंगे और हमारे रिलेशन में आपको सब पसंद करेंगे कि इस व्यक्ति के पास पहुंचते ही इतना जील एंथुजियम है जो हम भी फ्लाइंग करना शुरू कर देते हैं, इसकी दो बातें सुनते हमारा मन उड़ना शुरू हो जाता है। दिस इज द जील एंड एंथुजियम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ई, इज ईगोलेस, वी शुड बी द ईगोलेस इन आवर रिलेशन, देन वी कैन सैनिटाइज आवर रिलेशन। बी ईगोलेस, नो ईगो, whomsoever want to insult me can insult me, no ego, we should be the down to earth। हमें सदैव ऐसे होना चाहिए, तो उससे हमारे रिलेशन इतने अच्छे लगेंगे। If you will become egoless, everyone would like you and meet you, treat you, greet you। तो दिस इज द, आई एम गोइंग टू कंक्लूड, सैनिटाइज योर रिलेशन, अपने संबंधों को जो है स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, मधुर बनाए। अच्छा, ओम शांति। आई वुड लाइक वट एवर यू हैव लिसन, तो यू शुड नोट डाउन एंड मेक सम प्रॉमिस विद सुप्रीम फादर दैट वी विल नाउ फ्रॉम डे टू डे वी विल सैनिटाइज आवर रिलेशन, अपने संबंधों में ये सब एक एक बात को रोज आना, सैनिटाइज के अर्थ को अपने बच्चों को भी सुनाएं, सबको सुनाएं, और कोशिश करें इनको हम जीवन में प्रतिदिन ध्यान करके, उस सैनिटाइजर का तो ध्यान रखते हैं लेकिन इस सैनिटाइजर को भी यूज करें। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति, धन्यवाद।
होलिस्टिक सैनिटाइजेशन बहुत ही सुंदर विषय है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अप्रोप्रिएट है, जिस पर हम काम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता में अगर देखा जाए तो शायद इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर मिले कि होलिस्टिक सैनिटाइजेशन कैसे हो सकती है। तो गीता के भगवान के ये जो महावाक्य हैं कि मैं अधर्म का विनाश करके सत धर्म की स्थापना करता हूं, अगर हम इसको इस भाव से लें कि परमात्मा ऐसी दुनिया में, ऐसे विश्व में, ऐसी समाज में अवतरित होकर के और उसका प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि जब सत्य धर्म की दुनिया आती है, जिसको हम सतयुग भी कह सकते हैं, वहाँ नेचर भी बिल्कुल शुद्ध साफ होती है, देवताओं के मन बुद्धि श्रेष्ठ होते हैं, क्लीन और क्लियर होते हैं, और इस दुनिया को इसीलिए अमर लोक, स्वर्ग लोक, सतयुग कहा जाता है। तो उससे अगर हम सीखें कि आखिरकार सैनिटाइजेशन की जरूरत, और वो भी होलिस्टिक हर तरफा सैनिटाइजेशन की जरूरत जैसे आज महसूस हो रही है, वो क्यों पड़ी और उसका रूट क्या है, जिसको अगर हम ठीक कर लें तो नेचुरली होलिस्टिक सैनिटाइजेशन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि सारे विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मानव है, तो मानव जिस तरह का व्यवहार करता है उसी प्रकार की दुनिया की स्थिति बनती है। जब मानव अच्छे होते हैं तो सब कुछ साफ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, प्योर रहता है, और धीरे धीरे जब मानव बिगड़ जाता है, तो जब बिगड़ जाता है तो दुनिया भी बिगड़ जाती है। अब उसमें आप देखेंगे कि आज तो हम ग्रीड को देखें कि लोभ कितना है और लोभ के कारण से कितना दुनिया के अंदर पोल्यूशन फैलता है, और इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर अभिमान है, अभिमान की वजह से जो किसी दुनिया के अंदर किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं देना, कोई कमजोर है, गरीब है, तो वो भी खत्म हो गया है। आज तो मनुष्य अभिमान में ही जीता है, जबकि उसको कल अगले घड़ी का भी भरोसा नहीं कि मैं शरीर कब छोड़ दूंगा, किस चीज का उसको अभिमान है समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से काम विकार आप देखेंगे तो आज हमारे भारत की नारी जाति घर से निकलने से भी डरती है, 3 वर्ष की छोटी बच्ची का रेप हो रहा है, 60 वर्ष की ग्रैंड मदर का रेप हो रहा है। तो ये जो काम विकार का प्रदूषण है, जो कहा गया था कि जहाँ नारी का सुरक्षित है, उसका सम्मान सुरक्षित है, वहाँ देवता बसते हैं, आज क्या हालत है। आज इतने समझदार लोग हैं, लेकिन समझदार लोग क्या कर रहे हैं कि विनाश की तैयारी कर रहे हैं और समझते हैं इससे शांति हो जाएगी। कितने विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, कभी भी आप टेलीविजन में देखें कि किसी देश के अंदर बम गिराए जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जलती हुई नजर आती हैं, बड़ा खौफनाक सीन होता है। इस प्रकार से प्रकृति को भी हमने अग्रेसिव बना दिया है, प्रकृति को इम्बैलेंस ला करके आज आप देखते हैं कि सागर में तूफान आ रहे हैं। तो ये सारी बातों का जो सार है वो ये है कि हम आत्मा की लेवल पर, जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि आज भी गीता का भगवान ये शिक्षा दे रहा है कि आत्मा की लेवल पर अगर हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, अर्थात जो गड़बड़, जो खामियां, जो गलतियां शुरू हुई हैं अपने को शरीर मानने से, क्योंकि लोभ भी शरीर मानने से ही आता है, वरना अगर व्यक्ति अपने अंदर अच्छे संस्कार भरे तो अगले जन्म में उसके साथ अच्छे संस्कार तो चले जाएंगे, बाकी जो यहाँ चीजें बनाई हैं, धन दौलत कार बंगला, वो तो यहीं रह जाएगा, तो लोभ का फायदा ही क्या हुआ। इस प्रकार से ये अगर ये जो गीता के भगवान ने आध्यात्मिक शिक्षा दी थी कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अब तुम्हारे को शरीर मानने से ही ये पांच विकृतियां पैदा होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा मानने से तुम परमात्मा को याद करके आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हो, एक पतित आत्मा से पावन आत्मा बन सकते हो। ये ही एक फार्मूला मुझे लगता है जिससे कि रियल तौर पर सैनिटाइजेशन हो सकती है, बल्कि सैनिटाइजेशन की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। मुझे थोड़ा सा ये भी ख्याल आ रहा था कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी, छूत छात जो होता था उसकी प्रथा थी, और वो प्रथा बिगड़ करके ये हो गई थी कि जो सफाई सेवक आदि हैं उनको अछूत कहना शुरू कर दिया था हमने। अब सरकार ने उसको कानूनी तौर पर उस प्रथा को तो समाप्त कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कि आज हम जिसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये भी एक प्रकार का छूत छात से बचने का ही है। हम कोरोना बीमारी के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो जब ये छूत छात की प्रथा चली होगी उसके पीछे भी तो कोई रहस्य होगा। वास्तव में ये सफाई सेवक इत्यादि से टच ना करने की प्रथा नहीं थी, इसका भाव अर्थ यही था कि मनुष्य जो है, कोई भी मानव, अगर उसके अंदर ये पांच विकारों की बीमारी है, यानी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से पीड़ित वो एक प्रकार का पतित और असुरी संस्कारों वाला मनुष्य है, अगर उसका आप संग रहेंगे, उसके हम नवाला हम प्याला बनेंगे, तो संग का रंग लगेगा और हमारे अंदर भी वो बीमारी आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है संग दोष से बचना चाहिए, सत्संग तारे कुसंग डोबे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्तियों की कंपनी करना जो खराब नेचर के हों, जिनके अंदर ये विकार हों, वो खतरनाक था। उससे बचाव के लिए शायद ये छूत छात चला होगा, लेकिन कहने का भाव यही है, अगर हम बुराई से, खराबी से अच्छी चीज को आइसोलेट कर दें, दोनों को मिक्स होने ना दें, तो भी हमें सैनिटाइजेशन की जरूरत घट जाएगी। सैनिटाइजेशन का अगर हम आध्यात्मिक अर्थ लें, वो यही होगा कि पवित्र रहना, पावन रहना, श्रेष्ठ कर्म करना, मीठा बोलना, जो भी हमारे गुण बताए गए हैं देवताओं के, वो हम धारण करेंगे। तो जैसे मंदिर के अंदर कोई जाता है तो जूता उतार के कुल्ला करके जाता है, उसको एक पावन जगह गिनता है, यद्यपि वहाँ देवताओं की मूर्तियां ही हैं। अगर हम चैतन्य रूप से दैवी गुणों को जीवन में धारण करेंगे, ऑटोमेटिकली दैवी गुणों वाले व्यक्ति के साथ जो अवगुणों वाला व्यक्ति है, आप ही उससे दूर रहेगा कि भाई ये तो देवता टाइप का व्यक्ति है, मैं इसके साथ अपनी जो अशुद्ध भाषा है या अशुद्ध व्यवहार है या अशुद्ध खान पान है, मेरा उसके साथ नहीं चलेगा। तो हम अपने ऊपर, हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर जोर दे, ध्यान रखे कि मुझे पावन बनना है, मुझे अपने संस्कारों को श्रेष्ठ करना है, हरेक का भला ही सोचना है, सबका शुभ चिंतन करना है, किसी का अवगुण धारण नहीं करना है, तो ये बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल में होलिस्टिक सैनिटाइजेशन का। बाकी तो इसमें चर्चा होगी, भिन्न भिन्न विचार निकलेंगे, हम सब सुनेंगे। ओम शांति।
मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। सचमुच विचारों की ही तो बात है। और भारत भूषण जी ने और परम आदरणीय निर्वैर भाई जी ने हमें ऐसे ही सुंदर विचार दिए कि हम अपने विचारों को ऐसे सुंदर, श्रेष्ठ और महान रखें कि केवल अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीना, औरों के लिए सोचना, ये महानता हमें मेंटली सैनिटाइज कर देता है। वो कहते हैं ना, आई की जगह यदि वी कर लिया जाए तो इलनेस भी वेलनेस में तब्दील हो जाता है, और इसी की वर्तमान समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। जो बीमार हैं, चाहे तन से बीमार हैं या मन से बीमार हो गए हैं, उन्हें अपनेपन का एहसास कराना, हम साथ साथ हैं, एक परिवार के हैं, और मिल करके किसी भी प्रकार की समस्या का, किसी भी प्रकार की महामारी को हम दूर कर सकते हैं, ये एहसास कराना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। और ये एक अच्छी फीलिंग हम सबको प्रदान करती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी रत्नमोहिनी दादी जी, जो बाल्यकाल से ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अध्यात्म की जो गंगा है उसे चहों ओर प्रवाहित कर रही हैं, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, शांति है, शक्ति है और सारे संसार के लिए कल्याण की भावना है। तो आइए परम आदरणीय दादी जी के आशीर्वचन हम सब लेते हैं, ताकि इस विपदा के दौर में उनके आशीष को पाकर और उनके सुंदर वचनों को सुनकर हम अपने जीवन में मानसिक रूप से शक्तिशाली स्थिति की ओर बढ़ सकें। परम आदरणीय दादी जी,
इस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी को जो विभिन्न स्थानों पर बैठकर देख व सुन रही हूं, उनको अपने बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं देती हूं। वर्तमान समय में इन बीमारियों ने काफी भय का वातावरण पूरे संसार में पैदा किया हुआ है, इसलिए यह जरूरी है कि लोग अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाएं और इतनी सकारात्मक शक्ति पैदा करें जो मन में नकारात्मक विचार पैदा ही न हो, और यदि कुछ समय के लिए आए भी तो उन्हें शीघ्र ही मन से बाहर कर दे। राजयोग के अभ्यास से यह सकारात्मक विचार सहज ही पैदा हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी सहज ही इस सकारात्मक विचारों को जीवन में ला सकते हैं तथा वाणी व कर्म में लाकर अपने जीवन को सुखदायी व शांतिमय बना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो।
दादी जी, आपकी दुआओं के लिए, आपके आशीष के लिए और आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए जो हम सब पर बरस रहा था, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये आशीष, आपका ये प्रेम हम सबको निश्चित रूप से सुरक्षित रखेगा। कहते हैं जहां निस्वार्थ प्रेम होता है वहां परमात्मा का वास होता है, और जहां परमात्मा का वास हो वहां भय का कोई भी स्थान नहीं होता। तो इसीलिए इस कठिन दौर में हम न केवल अपने शरीर का ध्यान रखें लेकिन अपने मन का भी ध्यान रखें। मन का इस रूप में कि मन में यदि परमात्मा की याद है, यदि उनका साथ है, तो मन ऑटोमेटिक सैनिटाइज होता रहेगा, मन ऑटोमेटिक शक्तिशाली होता रहेगा, स्वच्छ होता रहेगा, स्वस्थ होता रहेगा। हम अपने आप को बहुत निर्भय और निश्चिंत अनुभव करेंगे। तो आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, यही दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं हैं। आज शाम को पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
टेक केयर, डोंट पैनिक। मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर्स, वी लर्न टू टेक केयर। डोंट पैनिक, हाउ डू वी डू दैट? Join us in a two-day e-conference by the Brahma Kumaris Scientists and Engineers Wing to explore wellness tools, spiritual principles and the power of meditation. Holistic sanitization. Awakening TV channel, Tata Sky 1084, Jio TV 1060.
एक मिनट मेडिटेट करें। कभी भी कहीं भी अपने मन को शांत करें।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर परमात्मा की मैं संतान हूं, परमात्मा की सुख की किरणें मुझे बेहद खुशी का अनुभव कराती हैं। इस जीवन यात्रा में मैं आत्मा सदा खुश रहती हूं। कुछ परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती हैं, कुछ मेरे अनुसार नहीं होती हैं। परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, मेरा प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है। मेरे सुख के वाइब्रेशंस परिस्थिति को परिवर्तन कर देते हैं। मैं सबको